SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
SBS हिंदी सेवा के सभी श्रोताओं को ईद और नवरात्रि के पवित्र त्योहारों की बधाई सहित नई दिल्ली से मनन कुमार का नमस्कार। पेश हैं भारत के समाचार। म्यांमार को भीषण भूकंप से हुई तबाही से उबारने के लिए भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत तुरंत राहत पहुंचाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा म्यांमार की सेना के नेतृत्व वाली सरकार के प्रमुख मिन ऑंग लियांग से हालात का जायजा लेने के बाद भारतीय सेना की तीनों अंग थल, जल और वायु सेना के अलावा NDRF यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीमों को राहत पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई है। इस बारे में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने विस्तृत जानकारी दी।
फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरिंग 15 टन्स ऑफ रिलीफ मटेरियल टुक ऑफ एट अराउंड 3 AM दिस मॉर्निंग फ्रॉम हिंडन एयरफोर्स बेस। दीज 15 टन्स ऑफ मटेरियल कंप्राइज टेंट्स, ब्लैंकेट्स, एसेंशियल मेडिसिंस, टारपोलीन, स्लीपिंग बैग्स, gen sets, solar lamps, food packets, kitchen sets, etc., also essential medicines. Thereafter, 2 aircraft with search and rescue personnel and equipment along with canines have left. One of them have left, I understand, and the other one is in the process of leaving for Napitau. There are 80 NDRF search and rescue team personnel specialists along with equipment, relief material and a canine squad is also part of this team. Third tranche of support that we are providing comprises a field hospital. This field hospital has around 118 specialists including doctors and medics.
शुक्रवार को आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.7 मापी गई थी। इस भूकंप के झटके थाईलैंड, बांग्लादेश, चीन और भारत तक महसूस किए गए। ताजा जानकारी के अनुसार अभी तक 1600 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार मौत का आंकड़ा 10,000 से ज्यादा हो सकता है। सन 2008 में भारत के साथ असैन्य परमाणु समझौता करने के कई वर्षों बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने हॉलटेक इंटरनेशनल नामक कंपनी को भारत में परमाणु संयंत्र बनाने और डिजाइन करने के लिए इजाजत दे दी है। अमेरिका के ऊर्जा विभाग की ओर से 1954 के यूएस एटॉमिक एनर्जी एक्ट के तहत मिली यह मंजूरी हॉलटेक को सख्त शर्तों के साथ भारत में 3 फर्मों को अनक्लासिफाइड लघु मॉड्यूलर रिएक्टर प्रौद्योगिकी हस्तांतरित करने की अनुमति देती है। इनमें शामिल हैं हॉलटेक इंटरनेशनल की अपनी क्षेत्रीय सहायक कंपनी हॉलटेक एशिया, टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमिटेड और लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड। इस प्रौद्योगिकी का किसी भी तरह का सैन्य उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित होगा। इस करार का एक बड़ा उद्देश्य चीन की लघु मॉड्यूलर रिएक्टर बनाने की बढ़ती क्षमता का सामना करना भी है, जो उसका प्रभाव वैश्विक दक्षिण में काफी ज्यादा बढ़ा सकती है। आपको बता दें कि हॉलटेक इंटरनेशनल को भारतीय अमेरिकी क्रिस पी सिंह ने प्रमोट किया है, जिसकी सहायक कंपनी हॉलटेक एशिया 2010 से पुणे में एक इंजीनियरिंग इकाई का संचालन कर रही है। इसी के साथ एक अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच पारस्परिक व्यापार समझौते पर 4 दिन से चल रही गहन वार्ता शनिवार को संपन्न हुई। वार्ता के बाद भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने एक ज्ञापन में कहा कि व्यापार समझौते को लेकर व्यापक समझ बन गई है और अब दोनों देशों का लक्ष्य इस समझौते पर शरद ऋतु तक हस्ताक्षर करना है। लेकिन ज्ञापन में यह साफ नहीं किया गया है कि क्या राष्ट्रपति ट्रंप के निर्णय के मुताबिक 2 अप्रैल से लागू होने जा रहे रेसिप्रोकल टैरिफ में भारतीय उद्योगों को कोई छूट दी जा रही है अथवा नहीं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बढ़ती दूरियों की अटकलों पर विराम लगाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को संघ के नागपुर स्थित मुख्यालय केशव कुंज का दौरा किया। प्रधानमंत्री बनने के बाद यह उनका संघ मुख्यालय का पहला दौरा है, जिसके कई अभिप्राय निकाले जा रहे हैं। 4 घंटे के दौरे में उन्होंने संघ के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार और दूसरे सरसंघ चालक माधव सदाशिव गोलवालकर को श्रद्धांजलि दी। स्वयं सेवकों को संबोधित करते हुए उन्होंने संघ की भूरी भूरी प्रशंसा की।
सिद्धांत और आदर्श इस वटवृक्ष को ऊंचाई देते हैं। लाखों करोड़ों स्वयं सेवक इसकी टहनी, ये कोई साधारण वटवृक्ष नहीं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत की अमर संस्कृति का आधुनिक अक्षय वट है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के नाम एक पत्र लिखा है, जिसमें केरल, गुजरात और अंडमान एवं निकोबार के तटों पर ऑफशोर माइनिंग की परमिशन देने के केंद्र सरकार के फैसले का विरोध किया गया है। श्री गांधी ने इसे मरीन इकोसिस्टम और कोस्टल कम्युनिटी की आजीविका के लिए खतरा बताया है। उन्होंने अपना पत्र सोशल मीडिया ऐप एक्स पर साझा करते हुए लिखा, हमारे तटीय समुदाय ऑफशोर माइनिंग के एनवायरमेंटल इम्पैक्ट का मूल्यांकन किए बिना टेंडर्स जारी करने के तरीके के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। लाखों मछुआरों ने अपनी आजीविका और जीवन शैली पर इसके प्रभाव को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। मैं सरकार से ऑफशोर माइनिंग ब्लॉक्स के लिए जारी टेंडर्स को रद्द करने का पुरजोर आग्रह करता हूं। पत्र में ऑफशोर एरियाज मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2023 की आलोचना भी की गई है। श्री गांधी का कहना है कि इस कानून का शुरू से ही विरोध हो रहा था, क्योंकि इसमें पर्यावरण और सामाजिक आर्थिक दुष्प्रभावों की अनदेखी की गई है। श्री गांधी ने पत्र में लिखा कि 13 ऑफशोर माइनिंग ब्लॉक्स को उचित एनवायरमेंटल असेसमेंट या प्रभावित समुदायों के साथ परामर्श के बिना निजी खिलाड़ियों के लिए खोल दिया गया है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस द्वारा दायर की गई FIR को रद्द करने का आदेश दिया है। यह FIR उनके सोशल मीडिया पोस्ट ए खून के प्यासों बात सुनो कविता को लेकर दर्ज की गई थी। न्यायालय ने फैसले में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जोर देते हुए पुलिस और निचली अदालतों की बढ़ती असंवेदनशीलता पर सख्त सवाल उठाए। जस्टिस अभय SOKA और जस्टिस उज्जवल भुइया की पीठ ने कहा, कोई अपराध नहीं हुआ है। जब आरोप लिखित रूप में हो तो पुलिस अधिकारी को इसे ध्यान से पढ़ना चाहिए। बोले गए शब्दों का सही अर्थ समझना जरूरी है। कविता में हिंसा का कोई भी संदेश नहीं है, बल्कि यह अहिंसा को बढ़ावा देती है। जस्टिस ओका ने पुलिस की कार्यशैली पर तंज करते हुए कहा, संविधान के 75 साल बाद भी पुलिस को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का महत्व समझाना पड़ रहा है। यह अधिकार तब भी संरक्षित किया जाना चाहिए जब बड़ी संख्या में लोग इसे नापसंद करें। श्री प्रतापगढ़ी ने न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए इसे मील का पत्थर बताया।
सबसे पहले तो माननीय उच्चतम न्यायालय का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने एक बहुत अहम फैसला दिया। ये फैसला सिर्फ एक इमरान प्रतापगढ़ी के लिए राहत नहीं है, बल्कि इसका संदेशा दूर तक है। जिस तरह से अभिव्यक्त की स्वतंत्रता का लगातार हनन किया जा रहा है, लोकतंत्र में जो सबसे खूबसूरत बात थी भारत के कि आपको अभिव्यक्त की आजादी थी, और कम से कम कला, आर्ट, कोई भी आर्ट हो, कोई भी फॉर्म हो, पोएट्री हो या फिर ड्रामा हो या फिर और कोई आर्ट का फॉर्म हो, जिस तरह से उसको टारगेट करके पिछले 10 सालों में मौजूदा सरकार ने उसको कुचलने की कोशिश की है, उसके खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट का आज का ऑब्जर्वेशन के साथ साथ जो पॉइंट्स उन्होंने लिखे हैं, उनके लिए बहुत, मुझे लगता है कि बहुत धन्यवाद मैं देता हूं।
तो ये थे अब तक के समाचार। नमस्कार।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।